श्लोक संख्या 16। कांची गुणोल्लसत श्रोणिम हृदयाम भोजविष्टरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयनवर्धनम कांची गुणोल्लस श्रोणिम हृदयाम भोजविष्टरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयनवर्धनम कांची गुणोल्लस श्रोणिम हृदयाम भोजविष्टरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयनवर्धनम। कांची गुणोल्लसत श्रोणिम हृदयाम भोजविष्टरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयनवर्धनम। कांची गुणोल्लस श्रोणिम हृदयाम भोजविष्टरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयनवर्धनम। कांची गुणोल्लस श्रोणिम झालं ना? तुम्ही म्हटलं एक वेळ, एक वेळच म्हणायचं, जप नाही करायचं, फक्त एक वेळ। कांची करधनी गुण गुण उल्लसत चमकीली श्रोणिम कमर तथा कुल्हे हृदय हृदय अम्भोज कमल विष्टरम जिनका आसन, जिनका आसन दर्शनीयतमम देखने में सर्वाधिक मोहक शांतम शांत गंभीर मना मन हृदय नयना आंखें वर्धनम प्रसन्न करने वाला। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद, उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक है और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रत्युक्त दर्शनीयतमम शब्द का अर्थ है कि भगवान इतने सुंदर है कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहता। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते अघाते नहीं। भौतिक कलमश के कारण संसार में हम जितनी उत्कटता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने सुनने स्पर्श करने इत्यादि कि हमारी इच्छा है भगवान को तुष्ट करने के लिए होती है तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती है। ओम अज्ञान निमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुतादायिन्नाति नीचो ततारक हानुमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयदे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। काञ्चीगुणोल्लसश्रोणिं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् श्रीमद्भागवतम् भगवान कपिल का माता देवहूति का उपदेश का हम श्रवण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम उपस्थित समस्त भक्तों के चरणम वंदना करके उनकी कृपा याचना करते हैं ताकि उन सभी के आशीर्वाद से कुछ भगवान की कथा स्फुरित हो सके। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्यैते कथयितार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस प्रकार की अनन्य श्रद्धा निष्ठा भगवान के प्रति होती है उतनी जब गुरु वैष्णव के प्रति हो जाए तस्य एते कथयन्ते प्रकाशन्ते महात्मना। संपूर्ण वैदिक शास्त्र प्रकट हो जाता है उसके हृदय में। जितनी श्रद्धा भगवान में है उतनी जब गुरु वैष्णव हो जाए। साधारण मनुष्य तो दूर की बात है, साधु गुरु वैष्णव की यदि कृपा हो जाए तो ज्ञानेश्वर महाराज तो रेड़े के मुख से रेड़े बोलता ना भैंस रेड़े तो रेड़ा रेड़े के मुख से भी वेद को कहलवा सकते हैं। मुकम करोति वाचालम। तो यहां भगवान कपिल का प्रसंग चल रहा है, अध्याय 25 से पुनः भक्ति के प्रमुख अंगों को, साधु संघ की महिमा को बतलाए, 26 सांख्य दर्शन, 27 ज्ञान दर्शन, लगभग सांख्य योग, ज्ञान योग, और यहां पर हठ योग या अष्टांग योग, किस तरह से योगी 8 अंगों का अनुशीलन करते हुए क्रमशः प्राणायाम, दहित दोषान, धारणा, विश्व किल विषान, प्रत्याहारेण संसर्ग, ध्यानेना अनिश्वरान गुणान, कौन कौन से कार्य किस किस शुद्धि को प्रदान करते, प्राणायाम दहित दोषान, देह के जो दोष है, देह की जो अपवित्रता है, प्राणायाम के द्वारा श्वास को संयमित करके देह के दोष नष्ट होते हैं। मतलब भगवान कपिल देव लगभग मेडिकल साइंस भी बता रहे हैं यहाँ पे। प्राणायाम दहे दोषान, धारणाविश्च किल्मिषान, देह के दोष नष्ट होते हैं प्राणायाम के द्वारा, और धारणा के द्वारा हृदय का कलमश नष्ट होता है, जिसका वर्णन अब यहां पर हो रहा है, प्रत्याहारेण संसर्ग। और जब इंद्रियों को हम प्रत्याहार के द्वारा, अर्थात इंद्रियों को जो इंद्रिय विषय है उनसे जब रोकते हैं, संसर्ग दोष, संसर्ग दोष मतलब इस संसार में जो संग दोष है उस दोष से मुक्त होते हैं, प्रत्याहारेण संसर्ग, ध्यानेना अनिश्वरान गुणान, और ध्यान के द्वारा क्रमशः 3 गुणों का प्रभाव जो है उससे जीव शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए प्रत्याहार का, प्राणायाम का प्रक्रिया बतलाने के बाद भगवान कपिल देव अब श्लोक संख्या 13 से 18 तक धारणा का विषय बतला रहे। तो इसी विषय को हम पिछले 2 दिन से भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से धारण और ध्यान में अंतर क्या है। तो धारण अर्थात अभी इंद्रियों ने और मन ने पूर्णतः से भगवान को ग्रहण नहीं किया है, मन पूर्णतः से पवित्र नहीं हुआ, इसलिए भगवान परसों का हम चर्चा जहां प्रारंभ किए थे, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन मुखे जिह्वादो स्वयं स्फुरत्यद। श्री रूप गोस्वामी जो बतलाए हैं, श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला को अभी हम धारण नहीं कर पाते, अभी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जितनी अधिक अपवित्रता हो देखते हैं उतना अधिक धारण करना कठिन हो जाता है। भगवान का नाम ले तो तुरंत ही मन संसारी विषय की ओर दौड़ने लगता है अपवित्र हो तो, और संसार के विषय में न दौड़े तो फिर वह निद्रा को प्राप्त करता है, और संसार विक्षेप ना आए, लय ना आए, मतलब संसारी विषयों में भी नहीं जा रहा है और फिर सो भी नहीं रहा है, निद्रा को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो तीसरा आता है फिर उसको कहते हैं औदासीन्य। औदासीन्य मतलब नीरसता, जिसे भजन की नीरसता कहा जाता है, मतलब उसमें आकर्षण नहीं है, कुछ विशेष स्नेह नहीं है भगवान के प्रति, नाम के प्रति रुचि नहीं है। तो इस तरह के दोष आते हैं, तो अनुभव है भगवान का नाम भी जिस तरह से अनुभव नहीं आता, वैसे ही अनुभव यह है कि भगवान का रूप भी दृष्टि दोष के कारण, दृष्टि जब अपवित्र हो जाती है, बहुत दीर्घ काल से, अनादिकाल से इन दृष्टि के द्वारा विभिन्न जिन जिन योनियों में रहे, जिन जिन शरीर को हम प्राप्त किए, दृष्टि से बहुत अधिक संसार को हम देखे हैं, अनादिकाल से देख रहे हैं, और निरंतर जिसे दृष्टि से देखा जाता है, एक बार का जीवा से जब अन्न को जो लिया था, अन्न का दोष बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत जल्दी तो नहीं कहेंगे, फिर भी समय लगता है उसे भी, विषैर अन्न खाइल्या दुष्ट होइले मन, दुष्ट मने की सिर होय कृष्ण रसमरण। मन तुरंत दूषित हो जाता है यदि आपका अन्न दूषित हो जाए, आपका जल दूषित हो जाए, यदि पवित्र न हो, पवित्र भाव से ग्रहण न किया जाए। परंतु उसके दोष को निकलने का समय लगता है। कुछ लोग कहते हैं एक बार अगर अन्न दोष लगा तो एटलीस्ट, अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल, हर एक की भक्ति और पवित्रता पे। जिस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में जो एक सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, एक शुद्ध भक्त है जो भगवान के प्रेम का अनुभव कर रहा है, उसका उसकी तुलना 24 गुरुओं में से एक गुरु वहां पर अग्नि है। तो जैसे अग्नि के अंदर आप कुछ भी डालो तो जलकर खाक हो जाता है। अग्नि प्रदूषित नहीं होती, अग्नि दूषित नहीं होती है, उल्टा अग्नि के संसर्ग में आकर वह वस्तु पवित्र हो जाती है। वैसे शुद्ध भक्त को अग्नि कहा गया है, जैसे अग्नि सब कुछ हजम कर लेती है, तो शुद्ध भक्त में सामर्थ्य होता है कि वो सब कुछ ग्रहण कर सकता है, वह प्रभावित नहीं होता है। परंतु जिस अनुपात में हम भगवत अनुभूति से दूर है, भगवत साक्षात्कार से दूर है, उस अनुपात में संसार का प्रभाव होता है। तो कुछ लोगों को कभी कभी एटलीस्ट कुछ दिन तो प्रभाव होता ही है, और जो एकदम एकदम अशुद्ध होंगे तो उनको पता ही नहीं चलता है प्रभाव। परंतु होता है, अगर आप जैसे कुछ वक्त पिछले महीने किसी वक्त चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कुछ बाहर खा लिया, बाहर गए थे कहीं प्रोग्राम में, खा लिए तो बोले तुरंत प्रोजी बोले 4 दिन तक हमको पता चल गया। और कुछ लोग बोले प्रोजी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एकदम ही लो लेवल है। लो लेवल मतलब एकदम जड़ अनुभव है, अभी तो वास्तविक भक्ति का अनुभव नहीं किया है। भक्ति का जब अनुभव हो तो भक्ति के लक्षण होता है कि भक्ति बहुत सेंसिटिव हो रहती है। थोड़ा ऐसा भी नहीं, जैसे परसों मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार भी अच्छी तरह से भोग लेंगे और फिर भक्ति भी कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। जो संसार का रस ले रहा है, मतलब जिसको पानी पूरी भी है, वड़ा पाव भी है, तो सरस भोजन नीरस भजन कहा जाता है, और नीरस भोजन सरस भजन। जब खाने में मतलब विशेष रूप से संसारी आकर्षण जब न रहे, जीवा तुष्टि के लिए, उदर तुष्टि के लिए जो न ले, तो उसके भजन में भक्ति में तुरंत रस अनुभव। तो प्रमुख विषय जो मैं कह रहा था कि अन्न का दोष कभी कभी 7 दिन लगते हैं, कभी 15 दिन, जनरली कुछ लोग कहते हैं कि 2 महीना लग जाता है। अगर आप गलत किसी ने खा लिया कुछ तो 1-2 महीने लगते हैं। फिर आप जैसे निर्जला एकादश है, निर्जल उपवास आदि करते हैं तो फिर देह की शुद्धि होती है। परंतु दृष्टि का दोष सहजता से निकलता नहीं है। आप दृष्टि से जो कुछ देखते हैं उसका छाप हृदय के अंतर मन में, जो अंदर जो चित्त होता है, चित्त के ऊपर बैठ जाता है। जैसे मैंने परसों ही कहा था कि किसी ने व्यक्ति ने टेलीविजन देख लिया, किसी व्यक्ति ने मोबाइल में देख लिया, कुछ एक दृश्य देख लिया, ट्रेलर देख लिया, तो तुरंत प्रभाव क्या होता है, तो वहां बताया जाता है कि असंख्य जन्मों से हमने बहुत अधिक संसार का भोग किया है। हम जो देखते हैं कि हाँ एक पुरुष स्त्री भोग विलास कर रहे हैं, एक संसारी क्रिया चल रही है, तो जो क्रियाएं हम टेलीविजन में देख रहे हैं वास्तव हमने भी वो क्रिया की है कई जन्मों तक। तो कई जन्मों तक उन क्रियाओं को किया है, तो क्रियाओं की वो जो वृत्ति है वो दबी हुई है। भक्तों के संग में आए, कुछ भक्ति क्रियाओं में लगे, इसलिए वो निकला नहीं है, दब जाता है। भक्ति क्रियाओं को करने से दब जाता है, और जब प्रेम और रस की अनुभूति जब होती है तो वह शुद्ध होता है। अभी शुद्ध नहीं हुआ है, वो दबा हुआ है। तो अनुकूल वातावरण है जिसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस जहां पर वहां पर रहते हैं, तो वो दबा हुआ रहता है और भक्ति भाव आपके बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, और वो दबने लगता है नीचे से। परंतु जैसे किंचित मात्र भी आप संसार के रूप देख लेते हैं, किसी ने टेलीविजन देख लिया, किसी ने ये देख लिया, जो कुछ थोड़ा एक दृश्य भी देख ले, तो आप कहेंगे एक दृश्य देखा तो क्या हुआ, थोड़ा सा देख लिया तो प्रभु जी क्या हुआ। दूसरे दिन तो देखते कि भक्त कुछ देख लेते, फिर भी साधारण मंदिर में भी आते रहते हैं, जब भी करते रहते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, तो दीक्षा भी हो रही है, टेलीविजन भी देख रहे हैं, अंतर तो दिख नहीं रहा है, तो बहुत सूक्ष्म अंतर हो जाता है। क्या अंतर पड़ता है? तो वो परसों मैंने वो पॉइंट कहा था, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। जैसे आपने संसार किसी रूप को देख लिया, संसार के क्रियाओं को देखा, चैतन्य महाप्रभु कहते हा हंत हंत विष भक्षण तोप्य साधु संदर्शिना विषय नाम अथ योषिताम च। संसारी व्यक्ति के केवल देखने मात्र से ही क्या होता है, विष भक्षण के समान। विष भक्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनादि काल से जो भोग की वृत्ति जिसका भक्ति करके दबा रहे थे, क्या होता है, तुरंत वो जाग जाती है। भोग वृत्ति आप मतलब उसको पोषण मिल जाता है ना, वो अंदर जो दब गया था, जैसे आपने कुछ देखा संसार, तो तुरंत वो इच्छा जिसको राक्षस जाग गया है, सोया वो शेर को जगाना नहीं चाहिए, तो सोए के शेर के साथ वो जाग जाता है, वो इंद्रिय भोग की जो वृत्ति जाग जाती है। और जैसे आपने संसार को देखा तो तुरंत दूसरा प्रभाव उसका होता है कि प्रेम की इच्छा जो है वो एक एक परसेंट कम होने लगती है, माइनस हो जाती है। इसलिए देखा जाता है कि संसार को जो बहुत अधिक देखता है, कभी कभी बाह्य रूप से देखो मंदिर में भी आते हैं, बाह्य रूप से कभी कीर्तन भी करते हैं, जप करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु कहा जाता है कि बहुत अधिक आपने संसार को देख लिया है तो एक अनुभव रहेगा, भक्ति साधना बहुत कितने भी क्यों न कर ले। यहां तक किसी ने मुझे कहा कि वो जो शब्द है ना चैतन्य महाप्रभु, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पद, इसका अर्थ क्या? तो बोले कि इतना संसार चला गया है कि बहुत जन्मों तक नाम जप करेगा फिर भी प्रेम का अनुभव नहीं होगा, रस नहीं मिलेगा उससे संसार, तो इतना अधिक प्रभाव इस संसार। तो इसी को श्रील प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य कह रहे कि भौतिक जगत में हम इस संसार की सुंदरता को देखते हुए मन भरता नहीं, निरंतर इस संसार को देखते रहते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो अनुमोदन किया गया कि सबसे अधिक घातक जो है जिह्वा को आप संभाले न संभाले, परंतु कहा जाता है कि दृष्टि को तुरंत बहुत पवित्र रखना चाहिए। दृष्टि की पवित्रता अति आवश्यक है, क्योंकि वह यदि अपवित्र हो गई तो चित्त में फिर कितना भी हो जाए, जैसे यहां पर कहा हृदयाम भोज विस्तरम, भगवान जो हृदय में आसीन है उन भगवान की अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसा भगवान का जो रूप यहां पर बतलाया गया है, कांची गुणोल्लस श्रोणी, जिनके कमर में बहुत सुंदर करधनी है, विभिन्न प्रकार के अलंकार आभूषण भगवान के पीतांबर के ऊपर करधनी में पहनाए जाते हैं, अन्य भी स्थान पर है इसका वर्णन। हृदय भोज विश्रम दर्शन